سب روز آتے ہیں سب اتنے ہی سروس نہیں ہو پا رہی پہلے ہے جو پریوار سنگٹھت کرنے کی بات ہے وہ تو سروس کر لو مہا سنگٹھن میں کیوں دگنے آ جاتے ہیں ان کی سروس کرو ان کو ریگولر بنا دو سروس ہو جائے پریوار تو ہے نا لیکن پریوار میں ابھی مسلمان ہی گھسے ہوئے ہیں سات دن میں ایک بار آتے ہیں کرسچینس بھی گھٹے ہوئے ہیں گھسے ہوئے ہیں اور سات دن میں ایک بار سنڈے سنڈے جاتے ہیں تو ان کو کنورٹ کر کے کیا بنا دو دیوی دیوتا سنات دھرم کا پکا بنا دو جو نزدیک ہیں ان کو اٹھاؤ دور رہتے ہیں ان کے لیے تو بابا ہی بتا دیں گے اچھا سپتاہ میں دو بار آؤ کیا
آج کی کلاس سن ان کو معلوم پڑے گا کہ آج بابا صبح صبح آ گئے تو آپ کو تو چوٹ لگے گی
دھکا لگے
گا غلط ہو گیا ہم کو بھی کرنا چاہیے
اچھا اور جو ریگولر کلاس کرنے والے ہیں ان کی کوئی خوبی ہوئی کہ نہیں تو ان کو پریفرنس نہیں ملنا چاہیے کبھی ان کو ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے تو یہ ریوارڈ مل رہا ہے
جو لیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ملا جو لیٹ ہوتے ہیں کلاس میں آتے ریگولر ہیں پر لیٹ ہوتے ہیں
لیٹ آتے ہیں آتے تو ریگولر ہیں پنکچوئل نہیں ہے ریگولر تو ہیں اچھا
جیسے لیٹ ہو جاتا جلدی آنا
ہلو وانی میں بابا بولے تمہاری ہے وین ہو جا رہی ہے بابا نے آج وانی میں بولا کہ تم بچوں کی ہے وین ہو جا رہی ہے تو یہ کس سمے کے لیے
جیت ہو جاتی ہے تو ابھی کہاں جیت ہو رہی ہے ابھی گھڑی گھڑی جیت ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے جیت
ہمارے خود کے وکاروں سے ہار
کھا رہا ہے جب ہمارے سارے پور جنم کے جو دشٹ کیے ہوئے کرم ہیں پاپ کرم ہیں وہ سب چھین ہو جائیں گے یوگ بل سے تو پھر ہار ہونے کا کوئی سوال رہ ہی نہیں جائے گا پھر تو جیت ہی جیت ہوگی کرماتیت بن جاؤ آتما کا دیپک ایسا بن جائے جو مایا کا کوئی بھی جھونکا لگے اور وہ ہلے نہیں
جو بھولے اٹھی ہوئی اس کا پوتا نہیں لینے کے بعد بھی کبھی کبھی پرانا جب یاد آتا ہے تو انہوں نے سارا جام دیا
تم ان کو چھپا کے مت رکھو
بابا بھولے تھے شیو بابا کو ہار کی درکار نہیں اگر ایک تو اسکول
شیو باپ کو شیو باپ کی جو آتما ہے
شیو بابا کو ہار کی درکار نہیں بولے ہار مطلب اسکول ہار کی تو پہلے بات کری بابا نے اسکول ہار کی وہ ہار کی درکار نہیں
اسٹول ہار کی درکار
ہاں پر شیو بابا کو یوں بھی جب سے شیو بابا کا پارٹ چلتا ہے تو ان کے ہار کی تو درکار کبھی ہوتی نہیں کیوں بیر کے ہار کی بات شیو بابا ہار کی تو کبھی ہار تو ہوتی نہیں
جب سے شیو بابا
ہار کہتے ہیں سنگٹھن کو کئی پھول اکٹھے کیے جاتے ہیں تب پھر سنگٹھن کا ہار بنتا ہے وہ سنگٹھن کا ہار جب سنگٹھت ہو جائیں گے پیورٹی اتنی آ جائے گی ساکار میں تو ہار تیار ہو جائے گا پھر وہ گلے ہار ٹھیک ہے ابھی نہیں کہہ سکتے ابھی پھول لے سکتے ہیں پھول ارپن ہوتے ہیں تو ان پھولوں کو انکار نہیں کر سکتے کوئی شرن میں آتا ہے تو اس کو ٹھکرایا جاتا ہے کیا اس کو ٹھکرا نہیں سکتے
ہاں یہ تو ہو گئے پر یوں ہار مطلب یہ دنیا والوں سے ہار تو شیو بابا تو نہیں
سکتے وہ تو آپ نے ارتھ لگا لیا نا ہار کا جو ہار ہے وہ تو یہ ہار ہوتا ہے تو وہ ہار کوئی وہ جیت اور ہار کی بات نہیں ہے ہاں اور ہاں اپنے کو اونچا نہیں بولتے ہیں جو اونچا ہے اس کو اپنے آپ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں دنیا اونچا بتائے لیکن خود اونچا بتانا اپنے کو یہ نیچتا کی نشانی ہے ہلکے پن کی نشانی ہے ہاں
बिंटो पर्यंत हिंदी क्या होगा, बिंटो पर्यंत हिंदी क्या होगा, वो लिखते हैं ना बिंटो पर्यंत,
मिंटो पर्यंत, मिंटो पर्यंत सही उच्चारण क्या होगा।
ये अंग्रेजों की कोई भाषा होगी, उसका अर्थ यही है कि अपने को नीचा समझो, ऊंचा मत समझो, दूसरों को लार्ड बन के मत रहो। लार्ड का अर्थ योर ओबीडिएंट सर्वेंट, हाँ, और
वो आठ सवाल जो है ब्रह्मा कुमारी ने बताए, नहीं तो हम बताएंगे।
हाँ बताओ।
उसमें एक सवाल ये है कि शास्त्र अगर झूठे हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने ये कहावत क्यों दोहराई कि ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे।
हाँ।
तो क्या उस समय शिव की प्रवेशता ब्रह्मा के अंदर थी?
हाँ। नहीं थी तो बोला किसने?
नहीं तो ब्रह्मा बाबा ने ये कहा भक्ति मार्ग का ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्र,
भक्ति मार्ग का ब्रह्मा कहाँ थोड़े ही उतरता है, ब्रह्मा तो संगम युग में ही उतरता है। जब शिव आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आते हैं, दूसरे युग में कहाँ आते हैं।
उस समय तो जानते होंगे ना कि ब्रह्मा का पाठ किसका है, खुद को ब्रह्मा का।
ये बात नहीं है, ब्रह्मा भी उतरा है लेकिन हम तो भी नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे? जब शास्त्रों से टैली हो जाएगा। जो भी गुरु गुसाई हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनको शास्त्रों पर इतनी श्रद्धा बैठी हुई है कि वो तब ही मानेंगे जब शास्त्रों से टैली हो जाएगा ज्ञान। चलो दूसरे शास्त्रों में मिक्सरिटी है, गीता में तो इतनी मिक्सरिटी नहीं है, तो गीता से टैली करके दिखा दो। यज्ञ के आदि में भी तो गीता के अर्थ बैठ बताते थे, तो आदि में सतो प्रधानता थी या तमो प्रधानता थी? तो आदि सो अंत में, और गीता के अर्थ क्लियर करके निकलेंगे तो सारा ज्ञान क्लियर हो जाए गीता के आधार पर। वो झूठे झूठे अर्थ करके सुना रहे हैं कौन, और जो इंटरप्रेटर हैं, और जो व्याख्याकार हैं, वो परवर्ती हैं। और सबसे पहला कौन है टीचर जो गीता की व्याख्या करता है? शिव बाबा। जो गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला है उसे गीता ज्ञान कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे तो उस गीता ज्ञान को मथा किसने, किसने मंथन किया? शिव तो मंथन करते नहीं, उन्हें सोचने मंथन करने की दरकार। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन उसको मंथन करके गीता को टैली करके समझा सकता है संसार वालों को। ये बताया।
और पांडव सेना के अंदर घटोत्कच को बताया है, पांडव सेना ने घटोत्कच को बताया है। वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, राक्षसी माँ थी उसकी, और उसने कौरव सेना का बहुत बड़ा सहार किया।
बच्चा किसका था?
भीम का
बेटा।
तो
पांडवों का बच्चा था?
हाँ, पांडवों का बच्चा था
भीम।
पांडवों का बच्चा होते हुए भी राक्षसी
संस्कार,
तो घटोत्कच में कर्ण का, कर्ण के द्वारा मृत्यु पाई। तो ये व्यक्ता इसका क्या क्या ऐसा क्या अर्थ निकल रहा
है? ब्रह्मा बाबा कर्ण है
और घटोत्कच,
हाँ, सारी ताकत ब्रह्मा बाबा की उसमें लग गई, अर्जुन को बचना था।
बाबा ने तीव्र याद के बारे में जो बताया है कि तीव्र याद कैसे होगी, बाबा ने बोला तीव्र याद होगी तो सहज याद होगी, और सहज
तीव्र याद होगी नहीं, तीव्र याद होगी तब जो कचरा है आत्मा के अंदर वो भस्म होगा। जैसे धीमी आग में सोना डाला जाता है तो कचरा भस्म नहीं होता, वो ही तीखी आग होती है। आग जब बहुत तीव्र हो जाती है, हवा उसमें मिक्स हो जाती है, तो आग तीखी हो जाती है हवा के साथ, तो सोना सोने में से कचरा जो है भस्म हो जाता है।
तो उससे सहज याद हो जाएगी,
सहज याद हो जाएगी,
सहज याद होगी तो फिर निरंतर याद भी हो जाएगी।
तो हवा लगाओ ना
उसमें। हाँ, बोला कि देह को याद करना है, मतलब
देह को याद करना, बाबा का बाबन का अहंकार देह को याद करना,
फिर सर जन्म तुम्हारी देह को याद करने की रख पड़ी,
रख पड़ी हुई है।
हाँ, तो ऐसी देह को याद करना जो इस तरह,
हाँ अभिविचारी को बनो ना, तो बनो ना अभिविचारी, कौन मना करता है।
ऐसी देह को याद करना जिसका कभी विनाश नहीं होता, या विनाश होते कोई,
ये लक्ष्य नहीं रखना है कि हमें देह को ही याद करना है। अगर ये लक्ष्य रखेंगे कि देह को ही याद करना है, तो देह तो विनाशी है, देह के अंदर विदेही उसको याद करना है।
फिर बाबा ने बोला कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो,
नारायण को याद करो, तो नारायण तो सत्वप्रधान है, सात्विक स्टेज है, अभी कहाँ है नारायण, जो आगे चल के जो नारायण है उसे याद करना, वो तो सात्विक स्टेज है।
अभी साकार में निराकार को याद
कर। बाबा ने बोला है कि लक्ष्मी, बाबा लक्ष्मी तो बाबा के सामने आएंगी नहीं, वाइब्रेशन से ही पूरा से ही खींच के से काम होगा, तो क्या जगदम्बा भी बाबा के सामने नहीं आएंगे?
जगदम्बा तो सबसे ज्यादा सामने आती है, है? जगदम्बा का तो सबसे बड़ा मेला लगता है, वो किस बात की यादगार है? अरे जगदम्बा का जो बड़ा मेला लगता है किस बात की यादगार है? कि मिलन मेला प्रैक्टिकल में साकार शरीर से जितना जगदम्बा ने मनाया है तो उतना तो और किसी ने,
तो आने वाले समय की बात।
हाँ, आने वाला हो या जाने वाला हो, टोटल पीरियड में इतना मिलन मेला और किसी ने मनाया ही नहीं, इसलिए जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती लगता है।
लक्ष्मी बाबा के सामने आएंगे नहीं?
है?
लक्ष्मी बाबा के सामने नहीं आएंगे, टोटल वाइब्रेशन से काम करेंगे।
हमेशा सामने ही रहती हो तो अरे
हमेशा सामने ही रहती हो तो
मैंने तुम स्थूल को महत्व देते हो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं नहीं क्या अब यार बोलते जा रहे
चित्र में बताया,
चित्र में क्या बताया? हाँ तो अच्छी, तो अच्छी बात है ना, संगम युग में हमने पढ़ाई क्या पढ़ी है? पढ़ाई देह को देखने की पढ़ी है या आत्मा को देखने की पढ़ी है? तो आत्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत है
नहीं,
इसलिए वो सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ नजर नहीं जा रही है, सत्युग में एक दूसरे की तरफ नजर जाएगी तो नीचे गिरने लग पड़ेंगे। ये शरीर जो है ना, ये शरीर का जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना नीचे गिरते हैं। ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, पांच तत्व विनाशी हैं, इनसे हम जितना भी सुख खींचेंगे उतना हमारी आत्मा विनाश की तरफ जाएगी। इसलिए शंकर जी को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा निराकारी स्टेज में बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि देह का आकर्षण प्रकृति का आकर्षण से परे हो जाए, प्रकृति जीत बन जाए, प्रकृति के आकर्षण में रहेंगे तो प्रकृति चढ़ बैठेगी, प्रकृति का अधीन हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास
भरत नारद जैसे,
हाँ
भक्ति
फर्स्ट क्लास भक्ति,
मीरा जैसी नाम, मीरा
मीरा तो कलयुग में हुई है,
तो मीरा है वो कंटिन्यू हो जाता है, छोटी मम्मी का पार्ट है या बड़ी मम्मी का पार्ट है?
मीरा माने शाहजादी
बच्चे,
विश्व की मालिकिन कौन बनेगी?
लक्ष्मी
बनेगी, लक्ष्मी के ऊपर कोई नहीं होगा, लक्ष्मी के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। राजमाता किसकी यादगार है? जिसमें ज्ञान ज्यादा होगा वो कंट्रोल करेगा कि जिसमें ज्ञान कम होगा वो कंट्रोल करेगा? तो जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान है या लक्ष्मी में ज्यादा ज्ञान है? जगदम्बा में ज्यादा है, प्योरिटी लक्ष्मी में ज्यादा है।
बाबा हमेशा बोलते कि तुम बच्चों की बाप के साथ लव में रहते, तुम बच्चों की बाप के साथ लव में रहते,
लव मैरिज और दुनिया के अंदर लव मैरिज तो ज्यादा टिकती नहीं है। अरेंज मैरिज टिकती, लव मैरिज दुनिया की नहीं।
दुनिया के साथ जो लव मैरिज है वो दुनिया के जो आत्माएं हैं वो विनाशी देह के साथ हैं कि अविनाशी देह के साथ हैं? और शिव बाबा जो है विनाशी देह के साथ है ये अविनाशी देह के साथ है, तो अंतर नहीं पड़ेगा।
बाबा ने बोला है कि तुम असली याद में बैठोगे तो दर्द और दर्द सब भूल जाओगे।
हाँ,
तो असली याद
वही देह से डिटैच हो जाना। दर्द देह को होता है न कि आत्मा को दर्द होता है। अगर आत्मा डिटैच हो जाए देह से तो दर्द तो शरीर के अंदर रह जाएगा।
बाबा होता नहीं है ना, डिटैच कैसे करें?
तो प्रैक्टिस करने से होगा नहीं?
तीखी याद कैसे होगी?
तीखी याद ऐसे ही होगी जैसे महबूब कारखाने में जाता है, आंखें खुली रहती हैं और वो दुनिया को देखता होगा। तो जाता तो है लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता उसे। याद रहता है क्या? उसे पूछा है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा, तो कहेगा हमें तो महबूबा याद थी, हमें नहीं किसी की याद। तो जब वो भूल सकते हैं इंद्रियों के द्वारा जिनको देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था। तो ऐसी प्रैक्टिस हम कर दें, ऐसी प्रैक्टिस बना है याद की।
माउंट आबू में मुरली में आया था कि अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लो, बाप को याद करो, तो क्या ये सही है? अभी जैसे देह से डिटैच होना है तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर,
स्थूल कोठरी में बंद करने की दरकार है कि मन से एकांत होने की दरकार है?
मन से एकांत।
एकांत का भी तो अर्थ बताया है, एकांत का मतलब एक के अंत में रहो। ये शरीर क्या है? ये शरीर भी तो कोठरी कमरा है। तो प्रजापिता का शरीर क्या हो गया? बंद कर दो, मत निकलो बाहर उससे।
रहो ना, कभी कभी ऐसा ज्यादा अगर याद में खो जाते हैं तो कर्म को ही भूल जाते।
योग है कर्म सु कौशलम, जो सच्चा योग है कर्मों में कुशलता लाता है। कर्म जो है अच्छे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। दूध फैल गया तो कर्म क्या हुआ? कि हम बाबा की याद में दूध गर्म कर रहे थे, वो क्या तुम्हारा बाबा की याद कैसी है? तो दूध लुढ़क गया।
महबूब जा रहा था और इतना महबूब की याद में इतना खोया हुआ है कि उसको हाथ चलते हुए भी कोई मतलब
दिखाई नहीं पड़ा।
तो दिखाई नहीं पड़ी तो कर्म तो कुछ हुआ नहीं।
कर्म तो करी
आने जाने का कर्म कर रहा है। आँखों को खुली रखने का कर्म कर रहा है या बंद रखने का कर्म कर रहा है? तो फिर ऐसे कैसे कह दिया कर्म नहीं कर रहा है? लेकिन कर्म का जो फल है वो नहीं मिला। कर्म अकर्म हो गया।
ऐसी स्थिति
में न पाप कर्म बने न पुण्य कर्म बने।
कोई भी काम ऐसी स्थिति में रहकर संपन्न किया जा सकता है पूरा है? थोड़े समय के लिए मन निकाल हो जाता है, पावरफुल आदमी। लेकिन काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं लंबे समय तक, क्योंकि टाइम तो लगता है ना ज्यादा, कोई भी काम संपन्न कर लिया
करो ना। प्रैक्टिस टाइम लगता है तो प्रैक्टिस करने से ही होगा।
पहले शनि के मंदिर में एक ही शनि देवता जो वो काले मतलब रहते थे, और अभी भी हाल में जितने भी देवता है सबको इकट्ठे करके एक ही मंदिर में सबको काले कर दिए गए।
हाँ, कलयुग है ना,
सब काले हैं।
कलयुग में सभी काले हैं,
सभी काले,
इसे सबको काला कर दिया गया। सतयुग में सब तो काले नहीं, जो आखिरी नारायण है उसमें थोड़ी कमी आती है।
लक्ष्मी जी को कभी तो कमल पे कमल आसन पे दिखाते हैं, और तब लक्ष्मी को और कभी उल्लू पे सवारी करते
हैं। लक्ष्मी जब पुरुषार्थी जीवन में है तो उल्लुओं पर ही सवारी करती है।
उल्लू का अर्थ बाबा जो बाबा
उल्लू का अर्थ है यह है जिनकी बुद्धि नीचे की दुनिया में लगी रहती है, धंधे धोरी की दुनिया में, उनके ऊपर सवारी करती है। वो उसके ऊपर फिदा होकर के ढेर सारा धन लुटाते हैं। है संगम की बात है, है? कमल संपन्न हो गई तो कमल फूल।
बाबा जो ज्ञान और भक्ति दोनों उठा रहे हैं, डीके वाले और एडवांस वाले, उनको क्या कहेंगे? जो ज्ञान और भक्ति दोनों लेके चल रहे हैं, डीके वाले भी और एडवांस वाले भी,
तो उनका रिजल्ट क्या होगा?
क्या होगा?
शरीर छोड़ना पड़ेगा।
तो भक्ति छूटेगी
क्या? छोड़ना चाहेंगे तो छूटेगी, ज्ञान बुद्धि में धारण करेंगे तो छूटेगी। दो नाव में जिसको पाव रखने की आदत पड़ गई है, कम से कम एक पाव में तो ज्यादा दबाव दे दे, दोनों पाव में बराबर दबाव देंगे, दोनों पाव नाव में रखेंगे तो टांगे चिरी ही जाएंगी।
थोड़ा बहुत घर वालों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए करे तो
करो ना, शिव बाबा को अंदर से याद करो। उनके लिए दिखाने के लिए पूजा करते जा रहे, बुद्धि ऊपर लगाए रहो।
बाबा जिसे वो कारखाने में जाता है तो वो तो देह को याद करता है, वो हमको
प्रेमी
लेकिन हमको तो साकार में निराकार को याद करना है ना,
तो करो ना।
तो वो तो देह को,
मुर्दे को तो नहीं याद करना, तुमको मुर्दे को तो नहीं याद करना है, मुर्दे को याद करना है या साकार में निराकार को याद करना है? अगर उसमें शिव न है तो पत्थर बुद्धि है, पत्थर ठिक्कर का है या पारस है? अगर उसमें शिव निकाल दो तो पत्थर ठिक्कर आखिरी जन्म में है।
शिव है तो पारस
है,
शिव है तो पारस
है। हाँ?
लगातार जब आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहते हैं कि हम अंधेरे में भी चीजों को, वस्तुओं को देख सकते हैं।
अंधेरे में तो छोड़ो, यहाँ बैठे बैठे लंदन में देख सकते हैं।
मैंने अपनी आत्मा,
वो अंधेरा तो एक कमरे के अंदर ही अंदर है, दूर देख सकते हैं। अंधेरे में भी, दूर की दुनिया में अंधेरा लगा पड़ा है, रात है तो भी देख सकते हैं।
तो आत्मा के अंदर तो सूक्ष्म रोशनी होती है ना, मैंने ज्ञान की रोशनी, और स्थूल रोशनी देखते हैं हम तो, जैसे स्थूल प्रकाश है तो स्थूल चीजें देखो, लेकिन उसके अंदर तो ज्ञान की रोशनी, सूक्ष्म रोशनी, तो सूक्ष्म
शरीर धारियों को आंखें होती हैं, वो कैसे देख लेते हैं? वो अपने घोड़े में कैसे प्रवेश कर जाते हैं? जिस घोड़े में प्रवेश करना उसी में प्रवेश करेंगे, तो उन्हें वो चेहरा कैसे दिखाई पड़ जाता है? वो आत्मज्ञानी होते हैं क्या? आत्मा को पहचान लेते हैं क्या? शरीर को देखते हैं ना, तो कौन सी आंख देखती है? उनकी स्थूल आंख है तो है नहीं।
मैंने कहीं ना कहीं इसी प्रकार की जो सूक्ष्म में रोशनी निकलेगी ऐसी जो हम देख सके,
निकलती नहीं है सूक्ष्म में, देखने में नहीं आती है, इन आंखों से देखने की बात नहीं है,
क्योंकि वो सूक्ष्म है ज्यादा।
हाँ जी, और
बाबा पहले थोड़ा सा खाते थे और 15-15 दिन तक युद्ध लड़ने के लिए आते थे और घोड़े पे सो लेते थे, तो वो गोष्ठी हमारी कब बनी?
क्या बोला?
थोड़ा खाते थे पहले,
पहले ही तो लड़ने के लिए जाते थे, वो लोग युद्ध भी लड़ते थे और घोड़े पे ही सो जाते थे और वहीं पर ही खा लेते थे,
थोड़ा सा ही खाते थे।
वो बाबा उसमें दिखाया कि एक सीरियल चला है वो टीवी में, रणजीत सिंह, तो उसमें बताया गया है क्या 10 धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं ना, जो सिख धर्म है, तो उसमें दिखाया गया कि जो मुसलमान से लड़ाई लड़ते थे तो वो मुसलमान राजा बोलते थे कि वो कहाँ छुपे रहते हैं, कैसे वार करते हैं, सब लूट ले जाते हैं हमारा, तो ध्वज तो वहाँ पे बताते थे कि वो इतने पावरफुल है राजा कि घोड़े पे ही सो लेते हैं, जहाँ जहाँ वही खा पी लेते हैं, इतना तक खा लेते हैं, 15-15 दिन तक छुपे रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं।
हाँ,
वो रुद्रमाला के
प्रैक्टिस की बात है, हर बात में प्रैक्टिस चाहिए,
ऐसी प्रैक्टिस करने वाले जो दिखाए हैं तो रोजमर्रा की मर्जी नहीं है, जैसे बाबा राज स्थापन करने जाते हैं उस समय की
बात। आत्मा में जो भी शक्ति आती है वो कहाँ से आती है, कौन से युग से आती है? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में शक्ति भरी जाती है। और शक्ति कुछ डायरेक्ट भरते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भरते हैं। तो जो डायरेक्ट शक्ति भरने वाले हैं उनमें ज्यादा ताकत आएगी, या जो इनडायरेक्ट भरने वाले हैं उनमें ज्यादा ताकत आएगी? डायरेक्ट वाले, तो डायरेक्ट वाले रुद्रमाला के मण के हैं।
तो एक नशा सा जैसे आने लगता है, आलस नहीं लेकिन आंखों में जैसे बच्चा का
वो नशा भी हमेशा नहीं आता है। पूर्वजन्म में अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे कर्मों की रील जब उदय होती है तो नशा आता है। और जब बुरे कर्म किए हैं तो कितना भी तुम अच्छा पुरुषार्थ करो, कितना भी याद करने की कोशिश करो, वो नशा आएगा ही नहीं। सारा सब कुछ अपने पूर्वजन्मों की किए हुए कर्मों के आधार पर आधारित है। अभी भी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। है?
और
दुनिया में ध्यान के आधार पर, ध्यान के द्वारा
है?
ध्यान के द्वारा धन को अर्जित करते हैं
है?
दुनिया में जितना है उनसे जिसके पास ध्यान है उससे वो धन अर्जित करते हैं।
एकाग्रता
नॉलेज भी कह सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पैकेज जो लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आते हैं वो उनके ध्यान या उनके नॉलेज के आधार पर उनको बड़ा पैकेज मिलता है धन। तो ध्यान के आधार पर वो धन अर्जित करते हैं,
धन के द्वारा धन अर्जित करते हैं।
हाँ, ध्यान के द्वारा धन को अर्जित करते
हैं। यहाँ भी ऐसे,
यहाँ भी
हम जितना ज्ञान जो है दूसरों को बांटेंगे उतना हमारा मंथन ज्यादा चलेगा। मंथन ज्यादा चलेगा तो हमारा धन बढ़ेगा।
बाबा एक पूना के अंदर कॉलेज है, पूना के अंदर बालाजी कॉलेज है एमबीए,
पूना में
एमबीए का मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कॉलेज है बालाजी कॉलेज। वहाँ पे बच्चों का जब इस साल एडमिशन हुआ तो उनको सबसे पहले 3 दिन महाभारत दिखाई बाबा ने,
महाभारत दिखाया।
हाँ, 3 दिन सलग उनको कोई काम नहीं कराया, पूरे दिन रात दिन पूरे दिन दिन 3 दिन सलग महाभारत दिखाई। उसका क्या अर्थ है, वो क्या समझते हैं उस बात को?
सतत युद्ध करो जिंदगी में,
मैनेजमेंट के अंतर्गत महाभारत
तो अच्छी बात है ना। मैनेजमेंट में अच्छा मैनेजर कौन होगा जो लगातार युद्ध करने में तीखा हो?
लेकिन बिना ज्ञान के महाभारत देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे।
इसमें
महाभारत ज्ञान होता कहाँ है, भक्ति मार्ग में महाभारत देखने में आता है। महाभारत देखते हैं, महाभारत जानते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत सुनाते हैं। ज्ञान है क्या वहाँ? ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इतना तो आता है कि सच्चाई के लिए युद्ध करना चाहिए। इतना तो बुद्धि में बैठता है। मैनेजमेंट भी इसी बात है, यही बात है। मैनेजमेंट जो है उसमें वही मैनेजर अच्छा होगा। लो, स्कूल में तो फाइनल पेपर की डेट पहले से ही बताते हैं, ये बेहद के स्कूल में डेट क्यों नहीं बताते है? बता दी, सबकी डेट एक है या सबकी डेट अलग अलग है? तो तुम्हारी वही डेट है जो तुम्हारी संपन्नता की है, अपनी संपन्नता की डेट फिक्स कर दो, वो डेट फिक्स हो जाएगी। नारायण वाली आत्मा पहले संपन्न बनेगी या और आत्माएं पहले संपन्न बनेगी? तो उसका फाइनल पेपर पहले होगा या बाद में होगा या बीच में होगा? पहले होगा। सबका फाइनल पेपर भी अलग अलग टाइम से है, उनकी डेट भी अलग टाइम से है।
बाबा लौकिक में इंश्योरेंस करवा रखे हैं,
तो उनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि फालतू में पैसा जाता है बाबा, तो उनको बंद कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हमारा जब रखवाला श्री बाप है,
अगर कुछ,
है
तो कुछ पैसा वापस मिलता है तो कर लो, ये दिया है वो भी वापस मिल जाए तो अच्छा है। नहीं तो जैसे 10 साल पहले भुज में अहमदाबाद में गुजरात में आया था भूकंप, तो सारी कंपनियां भाग गई, एक भी पैसा किसी को नहीं मिला। तो ऐसे ही अगर आप शुरू हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा? 20-20 साल का इंश्योरेंस करके रखा हुआ है पैसा, इससे जो कुछ मिलता है सो ले लो।
तो थोड़े टाइम के लिए करवा सकते
हैं क्या
इंश्योरेंस?
छह महीने के लिए,
छह महीने साल भर
के अंदर भूकंप आ गया तो
फायदा कुछ
नहीं। एक व्यापी कहा है से जो कनेक्टिव जो भी मुरलियों ने विचार दिए बाबा ने जो बातें बताई है, तो जो पोस्ट कराते हैं मैंने संदेश देते हैं जी के बारे में, तो जब समझाना है बाबा, तो एक तो प्रजापिता वाली आत्मा जो योगी की आदि में थी उसके ऊपर से बहुत सारे दिए हुए पानी।
अरे बात अभी की हो रही है, पास्ट की थोड़ी ही बात हो रही है,
डायरेक्टली अभी के रथ के बारे में जो बताने।
आदि का रथ तो गया, उड़ गया,
प्रेजेंट रथ के बारे में
बताना। ये भी तो बताना पड़ेगा कि वो बच्चे आदि में भी थे।
हाँ ठीक है, थे तो उसका प्रूफ क्या है कि यही थे,
इसलिए उनको वो भी बताना पड़ेगा। फिर ये
वो बताओगे तो उसका प्रूफ क्या है कि यही थे?
जैसे प्रूफ देती है जब ज्ञान में से जो बच्चे चले जाते हैं तो दूसरा जन्म लेते हैं,
वो प्रूफ बताओ। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे तो ये प्रूफ हो गया कि मुरली में ये बात बोली है। कोई 20 साल के हो गए होंगे, कोई 25 साल के हो गए होंगे, ये 66-67 की मुरली है क्या? 67 में कोई 25 साल के हो गए, कोई 20 साल के हो गए, तो जो 20 साल के हो गए वो लक्ष्मी का पार्ट है, जो 25 साल के हो गए वो नारायण का पार्ट है। तो सन आ जाता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जब सन क्लियर हो जाता है तो उनकी उम्र देख के बता दो कि इनकी यही उम्र है। ये तुम समझा सकते हैं? ऐसे ही और ढेर सारे पॉइंट निकालो। बहुत सी ज्योतिषियों ने ढेर सारी बढ़िया बड़े बड़े ज्योतिषी हैं और विश्व प्रसिद्ध है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वाणी की है। उन वाणियों में से जो बिल्कुल टैली करती हो वो लगा दो, उनके आधार पे क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, जिसने ये बोला है सोमनाथ के साथ सोमनाथ में
ही ऐसी हो, तो सोमनाथ मंदिर बेहद में साबित करो। बेहद में सोमनाथ का मंदिर कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे सोमनाथ का मंदिर कौन सा है बेहद की दुनिया में जो राजा विक्रमादित्य ने अपना धन संपत्ति लगा के बनाया था? अहमदाबाद, वो अहमदाबाद का पालेड सेंटर है, उसमें उस समय कौन निकले, वहां से निकले हुए होने चाहिए, सोमनाथ भी होना चाहिए और सोमनाथनी भी होना चाहिए। क्योंकि माता गुरु है इसलिए माता जरूर पहले होगी और वो नारायण बनने वाली आत्मा बाद में होगी। वैसे भी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं राधा बड़ी थी 3-4 साल और कृष्ण 3-4 साल छोटा था, तो वो आत्मा जिसमें मुकर्र रथ में पार्ट चलता है वो आत्मा बाद में आई सोमनाथ मंदिर में और राधा वाली आत्मा पहले आ गई, तो ऐसे साबित हो जाता है ज्ञान में आने के आधार पर। ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट इकट्ठे करके 10-12 पॉइंट बता दो, फरकाबाद वाली बात उठाओ, फरकाबाद वाली बात, मालिक को मानते हैं, मालिक तो घर का मालिक तो बाप ही होगा।
तारीख से अगर बताएंगे तो सही
रहेगा। हाँ, हमारा आधार ही क्या है, हमारा तो आधार ही मुरली है।
एक बात अपनी तरफ से कहते हैं कि ये जो बातें आप बता रहे हैं पॉइंट से लेके हम सुना रहे हैं ये आपके बनाए हुए
हैं। हमारे बनाए हुए मुरली में नहीं आए
तो वो अपनी
तुम्हारी लिखी हुई है।
ठीक है हमारी लिखी हुई है तो चलो कुंभ सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। डरते काहे के लिए, हम तो नहीं डरते। डेट देते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई मुरली है, ये तुमने अपनी छपाई है,
किताब भी तुम्हारी है, छपाई
है। ऐसे कहने से थोड़ी चलता है।
उनसे निकलवाते हैं मुरली उसी डेट की,
उनके पास कहते हैं हमारे यहाँ ही नहीं, जो मुरली आप पड़े खत्म हो गए।
तो कोर्ट में जैसे अगर करते हैं अपन उसके लिए क्या वो फिर मुरलियाँ ओरिजिनल मुरलियाँ निकल के आएगी उनकी तरफ?
हमारे पास है उनका पुराना माल ना, उनके पास नहीं है, हमारे पास तो है।
उसी समय बोले तो हम उसी समय तो दिखा नहीं पाएंगे हमारे पास मुरली रहेगी।
हाँ तो मेहनत कर रहा हूँ ना, दिखा नहीं पाएंगे तो धंधे धोरी में लगे हुए हैं, धंधे धोरी कर रहे हैं। लड्डू पेड़ा खाने के लिए तो ज्यादा चाव है, खिचड़ी खाने के लिए तुम्हें चाव कहाँ है? तो प्रूफ निकालने के लिए मेहनत चाहिए ना, पुरानी मुरलियाँ इकट्ठी करो, बाबा की पुराने जो बोले हुए टैप हैं वो इकट्ठे करो, उन टैप को पढ़ करके फिर उनको वो मुरलियाँ सेट करो, पॉइंट सेट करो, तभी तो बात होगी पक्की। कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता।
लेकिन बाबा जब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा तब ये लोग कुछ करेंगे तो नहीं, मतलब कि जो केस चल रहा है दोनों
केस चलेगा तो ये अपने गुंडागर्दी करेंगे और क्या करेंगे, बाहुबल दिखाएंगे।
बता सकते कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ?
ऐसा कर रहे हैं तो तुम वो पकड़ पाओगे तभी ना, उन्होंने बाबा के साथ 98 में कर दिया, तुमने कुछ पकड़ पाया? वो तो पीछे रहते हैं, करवाते हैं दूसरों से, तो तुम्हारी पकड़ में कहाँ आए? तुम्हारी पकड़ में तब आए जब सारे केस क्लियर हो जाए, सारे केस क्लियर होने के बाद वह उनके ऊपर मुकदमा ठोंका जाए, तब जिनके ऊपर मुकदमा ठोंका जाएगा वो बताएंगे कि हमको इन्होंने बरगलाया था, इन्होंने पैसे दिए थे। वो ऑफिसर भी फंसेंगे, झूठे केस करने वाले भी फंसेंगे, पुलिस के जिन्होंने गलत झूठी झूठी रिपोर्टें लिखी वो भी फंसेंगे, तब बात क्लियर होगी। अभी जी इतनी मेहनत लंबी चौड़ी मेहनत है ना।
अपने एडवांस में जो मुरलियों के सेट थके हुए हैं खंडे खंडे एक खंड दो मोटी मोटी मुरलियाँ तो बाबा ने जो मुरलियाँ पढ़ी है अंडरलाइन भी होंगे वो वही मुरलियों के सेट हैं, तो उसमें से हम बहुत सारी मुरलियाँ दी उसमें से भी
अंतर
दे सकते हैं।
अंतर का देखा था
चेंज किया
हुआ वो अगर मुरली लेके आएंगे तो हम बता सकते हैं कि आप लोगों ने चेंज किया,
उन मुरलियों को दिखा सकते हैं। तुम्हारी किताबें छपी हुई हैं,
जो मुरली का पेज है वो ज्यों का त्यों किताब में छाप दिया गया है, जो लाइन ऊपर है वो किताब में ऊपर है, जो लाइन नीचे है वो किताब में नीचे है, उसमें प्रिंट जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है पुरानी मुरली में, और जो किताब में छापा गया है वो फोटो प्रिंट लेकर के उसे छोटा करके छापा गया है। हाँ लेकिन स्पष्ट है पढ़ने में। हाँ जी तो वो अभी उसको कहते हैं ये तुम्हारा छपाया हुआ है, हम साबित करते हैं हमारा छपाया हुआ नहीं, हमने फोटो प्रिंट लिया है उसमें से पुरानी मुरलियों में से।
वो भी नहीं मानते
हो? वो अभी उनके न मानने से क्या होगा, उनके न मानने से थोड़ी दुनिया चलती है।
क्योंकि लास्ट में बात यही अटकती है, वो यही बस बोलते हो इसके, जब हम बाकी वो सारे प्रूफ आप कितने ही दे रहे उनको, लास्ट में वो ये कहते हैं कि ये सब तुम्हारा है और उन्होंने कांटेक्ट कर दिए।
हमको एक ही जवाब देना, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, कुमारका दादी के धर्म का होगा तो वो कुमारका दादी की ही बात मानेगा, भगवान और ब्रह्मा भी उतर आए वो उनकी बात को भी नकार देगा, क्योंकि वो कुमारका उसे फॉलो कर रहे हैं। जो क्राइस्ट के फॉलोअर होंगे वो कभी भी तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेंगे।
उनके डर से तो नहीं बैठना बाबा अपने को, उनके डर से शांति से तो बैठना नहीं अपने को,
जैसे आज डर डर के वो अभी बोर्ड बना के रखे हुए हैं, उनको लगा ही रहे हैं
और डर डर के बाबा भी तो अंदर कमरे में बैठे।
नहीं नहीं वो तो खैर ठीक है बाबा, लेकिन
वो ठिका ठीक है, ये डरना ठीक बात है क्या?
ठीक नहीं है, लेकिन हमको बोर्ड लगाएंगे बाहर तो उनके कानों में बात जाएगी, जब लड़ने की शाम बात आएगी तो लड़ेंगे।
बोर्ड लगाने की मना किस है?
नहीं नहीं लगा रहे ना भाई लोग।
कौन नहीं लगा रहे?
हमारे इंदौर में ही नहीं लगा।
भाई का कहना है कि आप बोर्ड लगा दो, तैयारी वैयारी ले लो, बस बाबा की याद में जो
तैयारी। तो
बोर्ड किसने नहीं लगाया? गीता पाठशाला जहाँ खुली हुई है बोर्ड नहीं लगाया?
प्रश्न की बात है,
प्रश्न वाला बोर्ड बनाए
बताए, नहीं तो हम बताएंगे वो
वाले बोर्ड बना
के
लगा। जवाब आने चाहिए ना पहले इनको,
पर तैयारी नहीं है ना बाबा।
तैयारी बाबा ने ज्ञान दिया है हमको, तो उस ज्ञान के ऊपर से पॉइंट निकाल के तो हमको जवाब देना है। जो जवाब
निकालो ना पॉइंट
निकाल देंगे ना बाबा, निकल जाएंगे।
निकल के ना ये
नहीं नहीं ऐसे
पॉइंट
बाबा ने अपने आप अभी ऐसा नहीं है ना।
अरे 800 क्या 1000 पॉइंट निकलेंगे,
आगे से निकलेंगे
आगे से नहीं। कोई बैठ जाए रिसर्च करने के लिए तो 1000 पॉइंट भी निकल करके इकट्ठे, पूरी किताब सबके तैयार हो जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है उसका जवाब,
पर उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगी ना। ऐसे तो बिना तैयारी बोर्ड लगाएंगे
बाबा, कमरे में बैठे बैठे रहेंगे और हम तैयारी कर रहे हैं तो वो कमरे में बैठे बैठे तो
बैठे कमरे में बैठे बैठे भी तैयारी की जा सकती
है। तैयारी नहीं कर
रहे, बोर्ड लगा के बैठ जाओ फिर ऊपर से डंडा बजा के जवाब दो, तुम जवाब नहीं दे पाओगे तब क्या करोगे?
इसीलिए हम 8 पॉइंट तक नहीं, 10-15 पॉइंट तो रट ले, कल समझ ले उनको, उसकी तैयारी तो कर ले पहले, वही कर।
तैयारी तो चल रही है लेकिन क्या भूमि तैयारी चल रही है, ये कह सकते हैं
भूमि तैयारी चल रही
है, हाथ नहीं रुका रही है सभी को, काम भी रहता है दिन में तो उतना टाइम मिलता है सब अपना, फिर वो कलेक्शन लगे हुए हैं पॉइंट ऐसे मिले
अभी गीता का साकार भगवान कौन की पुस्तक जो मिली है हमको, उसमें करीब 6 पॉइंट के तो पूरे आंसर सही बिल्कुल क्लियर है, तो उसको भी लेकर के हम दुनिया को संदेश, क्या ब्रह्मा कुमारी को क्या दुनिया को संदेश हम दे सकते हैं? हाँ उसमें सारे मैंने क्लियर कर लिया बाबा, तो उसमें तैयारी की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सामने कोई भी अगर ऐसा महारथी भी बंद कर आएगा तो
नहीं है, 6 पॉइंट की बात नहीं है,
पूरे बहुत से पॉइंट,
गीता
भरी हुई उसमें, पूरी गीता भरी,
गीता के किस लोग से साबित कर सकता है, किसने के द्वारा भगवान ने, किसके द्वारा परमा भगवान ने गाली की है,
पूरी गीता भरी
है, दूसरा स्वरूप है।
तो इसलिए मेरा सोचना ऐसा है बाबा कि उनको लगा दें तो हमसे कोई टक्कर लेने तो आए तो हम उनको जवाब देंगे।
बाहुबल का क्या जवाब?
नहीं नहीं बाहुबल का तो नहीं, बाहुबल करने वाला आएगा ही नहीं,
बाहुबल का क्या जवाब देंगे?
बाहुबल करेंगे तो हमको तो प्रेम से जवाब देना,
प्रेम से जवाब देना है ना बाबा,
मुट्ठी भरे हम
युक्ति से काम करें,
युक्ति से काम करें, युक्ति से काम करें।
बाबा बच्चों को भी पोता मिल देना है क्या? छोटे बच्चों को भी पोता मिल देना है
तो जो हम करते हैं दे दो पोता मिल, बच्चों को सिक्कू तो नहीं करते हैं क्या?
करते ना बाबा,
तो दे दो पोता मिल।
भक्ति मार्ग में जैसे बताते हैं कि गाय को खेर के खूटे से बांध दो,
है
गाय को खेर के खूटे से बांध दो,
खेर के खूटे से,
हाँ तो खेर का खूटा जो कहते हो सारी ढेर सारी लकड़ियाँ खेर ही खूटो कहते हो,
खेर के खूटे से बांध दो, भाई का कहना है
खेर के खूटे से बांध दो, तो
खेर की लकड़ी,
खेर की लकड़ियाँ क्यों बोलते हैं?
बकरी की लकड़ी से बांध बोलते हैं, आम की लकड़ी से नहीं
है,
कि बोल रहे बोल आम की नीम की दूसरी बहुत सारी लकड़ी उसके बारे में, उससे मान लगे तो नहीं बोलते,
खैर की लकड़ी मजबूत होगी ना, खैर माने कत्था,
कत्था
उस लकड़ी से कत्था बनता है ना, वो लकड़ी
ताले की भी मजबूत रहती है,
ताजा
शीशम ये भी, मगर खैर के बारे में क्यों बता,
शीशम शीशम मजबूत,
खैर जिससे कत्था बनता है ना उससे छाले ठीक हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं,
घाव
ठीक होते हैं, बाल काटे हैं ना, तो जो चूना ही लगा दो कत्था में लगाओ तो घाव घाव हो जाएगा, पूरे कत्था लगा देते हैं तो चूने से जितना भी होगा डैमेज वो सब ठीक हो जाएगा, लकड़ी में भी यही बोल होता है,
चलो कहते हैं आदि सुन
घाव नहीं होने देगा क्या,
घाव नहीं होने
ऐसे ऐसे कहते ना कृष्ण को पूछ काई की दिखाई गई है, मोर की पूछ, मोर की पूछ जो है वो कड़क होती है या मुलायम होती है,
मुलायम
होती है, और गेंडे की पूछ
कड़क
होती है, गेंडे की पूछ कड़क होगी, तो कृष्ण को मयूर पंख जो दिखाया जाता है वो प्योरिटी की निशानी है, प्योरिटी की निशानी मैंने वो जो वो देवहन का अंग है मार मारने वाला, वो मार नहीं मारता ज्यादा, ऐसे खैर को भी दिखाया है, ऊंटा ऐसा हो जो घाव न होने दे, घाव को भरने वाला हो या घाव भरने वाला हो, घाव को भरने वाला हो, लेकिन जब ताव में आते हैं उत्तेजना में आते हैं तो कामी को याद रहता है कि हम घाव कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं,
और वो शीशम की लकड़ी का मुसल बनाते हैं, शीशम की लकड़ी
शीशम क्या और लकड़ियां भी है, शीशम की लकड़ी है मैदान में ज्यादा अवेलेबल होती है, ठीक है ठीक भी मजबूत है, ये इसका बबूल की लकड़ी है ये भी मजबूत है, शीशम जो है वो ज्यादा पावरफुल ज्यादा घिसने वाली कम है,
जैसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा गुणग्राही थे, वो दूसरों के गुणों को ही देखते थे अगुण नहीं देखते थे, तो हम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है तो क्या दूसरों के गुण ही देखना है, अगुण नहीं देखना है,
सही बात यह है कि हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हम जो देखेंगे आदि बनेंगे 24 घंटा वही देखने के आदि बनेंगे, तो वो बात हमारे अंदर भी आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा जो करता है वो करता है वो पाएगा, हम जो करेंगे वो हम पाएंगे,
हाथ बंद करेंगे तो अलबेला बन ही रहेगा, और दूसरे के अगर मान लो कोई बुराई है हम उसको
हमारे अंदर करें। बुराई नहीं है,
है ना,
तो पहले अपन ही देंगे ना,
पर तो ये भी कमजोरी होगी ना,
क्या
नजरअंदाज कर देना भी, जैसे
ब्रह्मा
ने किया हाई हरा सूझा
अपने लिए, अपने लिए नजरअंदाज नहीं करते अपनी कमियों को देखने के लिए, तो पहले अपन ही देखना है कि दूसरों को देखना है,
पहले तो अपनी देखे हम साथ में ज्ञान तो रखना है ना, कि क्या
क्या
है क्या बुरा,
क्या ज्ञान रखना,
कौन अच्छा है कौन खराब है,
पहले हमें क्या करना है ज्ञान कौन सा रखना, पहले आत्मा का ज्ञान रखना है कि प्रकृति का ज्ञान रखना है,
पहले आत्मा,
तो फिर स्वचिंतन भूल करके प्रचिंतन में गिरना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी प्रचिंतन पतन की जड़, सिर्फ गीत गाना सीखा है,
बाबा जी शिक्षण मित्र हम लोग अपने पुराने हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं या नए हिसाब किताब की शूटिंग कर रहे हैं,
दोनों बात है,
कैसे मालूम पड़ेगा,
पुराने हिसाब किताब जो चुप होते हैं उसमें हमको खुशी होती है हल्कापन भी आता है, नए हिसाब किताब बन जाते हैं श्रीमत के खिलाफ हम कदम उठाते हैं तो सगुना बोझ चढ़ जाता है, आत्मा भारी हो जाती है, खुशी उड़ जाती है। खुशी बढ़ना माना हल्के हो रहे हैं, और खुशी उड़ जाना माना भारी हो पाप का बढ़ रहा।
मुझने वाला मुझे तो क्या समझे,
मुझे
मुझ
आती तो वही बात है ना, मुझ आ रही है इसका मतलब ज्ञान की कमी है ना, ज्ञान का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ज्ञान की कमी है माने ज्ञान दाता है उससे संपर्क नहीं है ना, इतना संबंध नहीं जुटा हुआ है जो हम अपनी कमी को दूर कर दे। भगवान आया है तो भी मुझे बने दे मुझते रहे,
कहते बाबा कि लाभ लोभ को जन्म देता है, लाभ लोभ को जन्म देता
है। सतयुग नई दुनिया में जाने का जो लाभ है लोभ को जन्म दे तो अच्छा है ना,
वो लोभ अच्छा है
जो सात्विक और तामसी की बात है ना,
बाहर की दुनिया की बात
बाबा ये तो धन की बात कर
ये भी ज्ञान धन, ये भी तो धन की बात है ना, आत्मा का धन है ज्ञान, दुनिया का जो धन है बाहर धन है।
तो आदि सो अंत कहा जाता
है,
आदि सो अंत कहा जाता है,
आदि
आदि सो अंत,
आदि सो अंत
तो आदि में जो वैष्णवी माँ थी वैष्णवी वैष्णवी वाली आत्मा तो उसको हम ब्रह्मा कहेंगे बाबा आदि में,
लेकिन कि आदि में पहला ब्राह्मण कौन है,
प्रजापिता
इससे पैदा हुआ
जगदम्बा माँ जो पहली ब्रह्मा
ब्रह्मा का बच्चा ही ब्राह्मण होता है तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ,
ज्ञान के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे,
ब्रह्मा में ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मा से ज्यादा ज्ञान तो संस्कृति में होता है, फिर प्रजापिता पहला ब्राह्मण है तो वो किसका बच्चा है, कौन से ब्रह्मा का बच्चा है,
वो जो पहला ब्रह्मा गीता
बस,
तो फिर जो वैष्णव जी है वो तो ब्रह्मा नहीं कहेंगे,
वो ज्ञान के आधार पर है, ब्रह्मा भी एक है या तरह तरह के
हैं, जैसे अभी क्योंकि मुरली में तो यही डिफिनेशन दी है कि जिस तन में प्रवेश करूंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, अब वैष्णव जी में तो
वैष्णव देवी में प्रैक्टिकल में प्रवेश नहीं कर जाता, उसकी रग रग में ज्ञान समाया हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल में व्यक्ति के आधार पर उसकी रग रग में प्रैक्टिकल ज्ञान समाया हुआ है, यह सिर्फ बोल बोल का ज्ञान समाया हुआ है,
प्रैक्टिकल
तो भगवान नहीं समाया हुआ, सच्चाई प्रैक्टिकल में चाहिए, यह सिर्फ बोल बोल के लिए चाहिए सच्चाई,
प्रैक्टिकल
तो सत्य कोई भगवान कहा जाता है, भगवान को ऐसे पकड़ने की चीज है, पकड़ ले हो गए, गॉड इज ट्रुथ सत्यम शिवम सुंदरम,
तो इस परिभाषा के अलावा कोई ऐसा इशारा नहीं होता कि ब्रह्मा का नाम जो तभी पड़ता है प्रवेश का क्या है,
तो प्रवेश हो गया ना सच्चाई के आधार पर, प्रैक्टिकल जीवन है ना उसका,
थोड़ी
इश्यू है प्रैक्टिकल, ब्रह्मा है बोल बोल करने वाला, शंकर है मंथन करने वाला,
तो बाबा इसलिए कि पवित्र कन्या है पवित्र तन है तो उसमें बाबा जैसे कहते हैं प्रवेश नहीं करता हूँ,
प्रवेश नहीं करता हूँ लेकिन पवित्र के अंदर मार्ग समा जाता है, ज्यादा ही समा जाता है, जो व्यक्ति है वो ज्ञान को ज्यादा खींचती है प्रैक्टिकल जीवन में, इम्प्योर जो है वो ज्ञान को ज्यादा खींचता है प्रैक्टिकल जीवन में,
प्योरिटी
प्योरिटी ज्यादा खींचती है उसमें, कन्या में प्योरिटी होती है तो कन्या ज्ञान को ज्यादा खींच लेती है, कन्या माता में क्यों चल रही है ज्ञान ज्यादा, कारण क्या है
इन दोनों भाई ज्यादा
इंदर कुंदर छोड़ो, इंदर कुंदर लगाए रखो, एक जन्म की बात जन्म जन्मांतर इंदर में ही पैदा होते रहे क्या? और
साकार में निराकार को याद नहीं करोगे तो कैरेक्टर्स बिगड़ेंगे। तो फिर बाबा ने कहा है कि बड़े रूप को याद कर,
बड़े रूप को याद करोगे तो भी फायदा है,
फायदा
क्योंकि बड़ा रूप जो है उसका आखिरी अंजाम क्या है? बड़ा रूप जो है उसका भी आखिरी अंजाम क्या है? क्या है? अच्छा अंजाम है या बुरा अंजाम है?
अच्छा अंजाम।
तो हमारा भी
अच्छा
है, ये अच्छा हो। अरे भगवान की तो चरण रज भी माथे से लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई करता है माथे में से अंगुली लगा के फिर माथे में लगा ले। तो नीचा जो सबसे नीची स्टेज है उसको भी पकड़ लिया तो भी कल्याण है।
लेकिन सर्वोत्तम याद तो साकार के नाकार को याद करना ही है।
ठीक है, अगर मान लो कोई बूढ़ी माता है, 10-12 बच्चे पैदा कर लिए, सारी ताकत तो बुद्धि की निकल गई उधर, अब क्या करें?
उनके लिए वो याद ठीक है, लेकिन जो समझ
लिए उनके लिए वो याद ठीक है, माने वो बांधेली माताएं जो हैं और बूढ़ी माताएं जो हैं जिनको घर से बाहर ही नहीं, एक 80 साल की माता है कनाडा में, उसका पति अरुण 80 साल अभी भी बंद कर रहा है, बाहर निकल नहीं होता, कोई जान नहीं होता, अभी तक भर्ती नहीं कर पाई, सालों से चल रही है एडवांस में।
ये बुरी माताओं के लिए
क्या
साकार करना?
हमारी बुद्धि जिनकी ज्यादा काम नहीं करती है, बार बार बोलती है, हमें कोई पॉइंट याद नहीं होता, कोई पॉइंट याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, बाबा की याद रहता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा हमें बाबा याद नहीं रहता। कोई बूढ़ी माता को कहते सुना कि हमें बाबा याद नहीं रहता? कोई बांधेली माता को ऐसे कहते सुना हमें बाबा याद नहीं रहता? बाबा सबको याद, क्यों याद रहता है? साकार में बुद्धि में बैठ गया वो खड़ा रहता है तो वो याद रहता है। असल जो याद रहता है उसे ही याद करो ना, बड़े रूप में याद करो, वो भी अगर पूरा प्यार से याद करेंगे, कभी भी धोखेबाजी से नहीं कर, कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे, बगादारी से करेंगे तो भी प्राप्ति उतनी हो जाएगी। साकार तो निराकार भी आपका प्रभाव होगा, इसलिए भक्तिमान कहते हैं सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, उभय अरे भव संभव भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है।
उद्धव और गोपियों का प्रसंग भी
है,
उद्धव और गोपियों का प्रसंग
और ये बहुत प्रचलित है।
उद्धव जी का वो ज्ञानी थे, राधा को दिखाया है कि वो याद में टिकी थी, प्रेम करती थी,
साकार को याद करती,
साकार को याद करती थी, तो साकार और निराकार का उनका जो टकराव हुआ है वहां पर, उनको मनाने के लिए बैठे उद्धव जी, कृष्ण जी ने भेजे थे कि जाओ आप ही चले जाओ, उनको समझा दो, समझ नहीं रही है वहां पे
कृष्ण ने
बुद्धू
बनाया ना उद्धव को, कन्वर्ट कर जाने, तो कन्वर्ट किया या कन्वर्ट होकर क्या गए?
कन्वर्ट हो गए
तो फिर
मतलब जीत साकार को याद करनी थी,
साकार
जो साकार को याद करते थे उनकी जीत थी,
साकार से प्रेम,
प्रेम जीत गया,
प्रेम जीत गया ना वो साकार से प्रेम जीत गया।
टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाएगा तो नंबर पीछे रह जाएगा ना,
साकार को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म थोड़ी बनेगी ना,
लक्ष्मी का 2 नंबर हो जाता है, 1 नंबर हो जाता है, तो पीछे रह गए या आगे बढ़ गए? तो जब गुरु ही ऐसा है फिर गुरु को जो फॉलो करेंगे, लक्ष्मी को फॉलो अगर उद्धव जी ने किया तो आगे बढ़ेंगे या पीछे ही हटेंगे?
पीछे
निराकार को याद करने के लिए आगे जा सकते हैं। इसी प्रकार योग्य है।
सकर में मेरा काफी याद करने वाले
वो जो यादगार बनी हुई वो हारने की बनती है उद्धव जी की, तो हार गए उस समय पे वो हार गए ना वहाँ तो, और राधा जी जीत गए बोले कि प्रेम आगे है ज्ञान पीछे, ये दिखाया हो तो क्या प्रेम से याद करो ना, मतलब ये तुम्हारा प्रेम अगर निराकार बिंदी में भी जुटा हुआ है तो पता नहीं है ये 8 पॉइंट कब आए थे, 8 पॉइंट आए थे तब जिस रात में मोबाइल में सारे गीत ही भरवा दिए थे, वो गीत रात भर याद करते रहे, और जब से ज्ञान में आना हुआ तब से कुमार दादा ने पूछा कौन किस संबंध से शिवभाव याद करता, तो उस समय तो बेसिक में सब बिंदी को ही याद करते, हमने कह दिया आप तो पति सजन रूप में याद करते, तो सब लोग हंसने लगे लेकिन हमने अभी सच्चाई बताई, तो वो 8 पॉइंट निकले ही तब है जिस रात सारा रात गीत ही सुनते रहे, अब बाबा याद करते रहे, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आएगी, सवेरे को 8 पॉइंट आ गए
पहले ही
तो, तो प्यार पैदा हुआ तभी तो आ गए, नहीं समझ रहे
आगे
क्या आया,
जो तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आती, तो उससे लगन और प्यार पैदा,
तो बाबा के रूप में थोड़ी याद किया,
बिंदी के रूप में याद
किया, बिंदी के रूप में याद किया, लेकिन बिंदी को भी किस संबंध से याद किया,
सजनी के रूप में,
सजनी याद किया, सजनी के रूप में याद किया, तो सबसे ज्यादा प्यार कौन से संबंध में पैदा होता है, कौन सा संबंध ऐसा है सबसे ज्यादा प्यार पैदा करता है, सर्व सजनी का संबंध सबसे ज्यादा प्यार करता है, प्यार पैदा करता है, तो प्रेम जो है वो बड़ी चीज है,
प्रेम गदिया की साखी जाए समय
है, सूरदास जी ने गीत गाया प्रेम जगत का साथ और साथ में बोल प्यार दे जाने के प्रति करो तो नीचे गिरेंगे, बोल प्यार निराकार के प्रति करो दिव्य गति से ऊंचे जाएंगे,